अज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा रघुनलिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी हम सब लोग नंदगांव में बैठे हैं और नंदगांव में ये आशेश्वर महादेव जी का मंदिर है और इसके किनारे में आशेश्वर कुंड है। नंदगांव सभी प्रकार के जितने भी यहाँ पर क्षेत्र हैं वन हैं उसमें प्रधान स्थान है। आप कह सकते हैं सभी स्थानों के राजा हैं नंदगांव, क्योंकि तो यहाँ पर विश्व के राजा श्री कृष्ण भगवान विराजते हैं। अपने बाल्यपन का काल उन्होंने यहाँ पर बिताया है और हमारे संप्रदाय में एक आचार्य आते हैं का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो अपने भजन में कहते हैं कि मैं किसी देवता को या किसी देव को नहीं पूछता हूँ, मैं केवल नंद महाराज को पूछता हूँ, क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म जो हैं अखिल ब्रह्मांड नायक पूरे विश्व के रचयिता श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो उनके घर में बालक बनकर बचपन का खेल खेलते हैं, जैसे हमने वही पहले भी बताया कई बार कि सब वेदों के रचयिता वेदों के जानकार जिनके द्वारा सब वेद वेदों के द्वारा उनको ही जानना है ऐसे व्यक्ति यहाँ पर माता पिता से सीखते हैं, सब सृष्टि को चलाते हैं वो यहाँ पर चलना सीखते हैं, घुटनों पर चलते हैं, गोद खेलते हैं, स्तनपान करते हैं, गेंद खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, आँख में चोली छिना झपटी लुका छुपी इस प्रकार के खेल कौन खेल रहा है जो सभी योगियों के तपस्वियों के ध्यानियों के ज्ञानियों के सभी लोगों के जो इष्ट हैं जिनको प्राप्त करने के लिए सभी संत महात्मा विरक्त होकर जंगलों में पहाड़ों में गुफाओं में रहते हैं सब कुछ छोड़कर और उनकी प्राप्ति की तमन्ना में कष्ट करते हैं वो यहाँ पर नंद बाबा के घर में बालक बनकर आए हैं। इसमें भगवान की भी महानता प्रकट होती है और नंदगांव और ब्रजवासियों की महानता भी प्रकट होती है। ब्रजवासी इतने महान हैं को उस परम पुरुष के लिए ये करना वो मजबूर हो जाते हैं कि हम उनके लिए बालक बने और उनको ऐसा आनंद दे कि जो विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है। ऐसा आनंद दे कि जहां पर वो मैं भगवान हूं ये भी भूल जाए, इतना वो श्रेष्ठ हैं ब्रजवासीगण। इसलिए उनके लिए अपना वैकुंठ धाम, ऐश्वर्य और सब कुछ आनंद, वहां का जो है ऐश्वर्य संपन्न आनंद, वो सब छोड़कर यहाँ पर वो नंगे पैर घूमते हैं। वैकुंठ का ऐश्वर्य, वैकुंठ की प्रार्थनाएं, वैकुंठ का छप्पन अनंत भोग छोड़कर यहाँ पर चुरा चुरा कर छाछ और मक्खन खाने के लिए आते हैं। ये ब्रजवासियों का प्रेम है। भगवान की इसमें गौरव क्या है, भगवान प्रेम के खातिर अपना पद, अपना ऐश्वर्य, अपना पद और अपने पद का अधिकार सब कुछ छोड़ के आते हैं। जो वैकुंठ में विराजते हैं वैकुंठाधिपति के रूप में, और जहाँ दास के ऊपर कोई भाव नहीं है, अनंत जन लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर ब्रजवासियों के जूठन खाने के लिए आते हैं।
शंकर की भगवती
जय श्री राधे। पर बाबा बाद में लगाना, कथा के बाद में व्यवधान होता है। राधे राधे, आराम से लगाएंगे आपसे। हाँ आप बैठे करो ना, आपको क्या करते हैं? You're still standing there only. You're not going to move. आप थोड़ा बैठिए सर, आप कथा में फिर वो लिंक टूट जाता है। तो इसमें भगवान का भी गौरव है, क्योंकि भगवान कोई बड़ा आदमी, कोई छोटा आदमी जब भी मेहनत करके बड़ा बन जाता है तो वो कोई विशेष बात नहीं है, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उद्धव जैसे श्रेष्ठ भक्त जो है तुरंत का पत्ता बनना चाहते हैं तो वो कोई विशेष बात होती है। और जब गोपियाँ ऐसा योग करते हैं भगवान को भूलने के लिए, वो फिर विशेष बात है। कुछ सबसे ऊंचा पद जो है उसको छोड़कर जब कोई निचला पद चाहता है किसी उच्च हेतु के लिए, जैसे कि छह गोस्वामियों ने, रूप रघुनाथ सनातन गोस्वामी ने अपने ऐश्वर्य संपन्न पद को, अधिकार को, गौरव को छोड़कर भिक्षुक बनने का प्रयास किया। भिक्षुक बने यहाँ पर, हाँ ये बहुत महान चीज है। कुछ बड़ी वस्तु के आनंद को त्याग कर एकदम न्यून बन जाना, ये महान चीज है। और यही भगवान को बहुत पसंद आती है। सबसे न्यून बन जाता है, सबसे तुच्छ बन जाता है, तो भगवान को उतना ही अधिक प्रिय होता है। इसलिए गोस्वामियों ने क्या किया, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलमति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। बड़े बड़े ऐश्वर्य जो है जिसके लिए दुनिया लालायित है, युद्ध होते हैं, ईर्ष्या होती है, झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, लोग क्या क्या नहीं करते उसको प्राप्त करने के लिए, एक एक भोगों को प्राप्त करने के लिए। उन सब दुनिया के आकर्षित करने वाले भोगों को उन्होंने त्याग करके क्या किया, भिक्षुक बने यहाँ पर पेड़ पर रहने के लिए। जिनके पास महल थे, जिनके पास हजारों एकड़ जगह थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, इनके पास बोट भर भर के सोने के मोहरे थे, यहाँ पर आए एक पेड़ के नीचे रहने के लिए। वो भी 3 दिन के ऊपर एक पेड़ नहीं चाहिए उनको, उनका नियम ही है। वो तो पेड़ से भी आसक्त नहीं होना कि ये पेड़ में अच्छे फल है, अच्छी छाया है, अच्छा खुशबू आता है, अच्छी नींद भी आती है तो एक पेड़ से भी आसक्त नहीं होना है। रोज हर एक नया नया पेड़, कोई वन से भी आसक्त नहीं होना है, कोई ये बहुत वन बहुत अच्छा है। अलग अलग वनों में भटकते थे वो, और जो मिलेगा उसका नियम हुआ करता था, 3 घर में मांगेंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो उस दिन भगवान की इच्छा ऐसी है कि हम भूखे रहें तो भूखे रहते थे। ऐसे नहीं कि 10-15 घर 20 घर में जब तक मिले लें तो तक लेते रहेंगे, कुछ पूछते रहेंगे। ये सब क्यों करते थे, केवल अपना जीवन तो है भगवान की सेवा में समर्पित रखने के लिए करते थे। उनका जो जीवन का जो विधि था वो ये था कि जाके विधि रहे राम, रखे राम तारे ताके विधि रहिए, ताही विधि रहिए। जैसे वो रखना चाहते वैसे रहे। अब भरपेट खिलाना चाहते तो भरपेट खाएंगे, सुखी देना चाहते सुखी खाएंगे, फल खाना तो फल खाएंगे, जैसे वो रखना चाहेंगे वैसे रहेंगे, उनके भरोसे रहेंगे। यही भक्ति का जीवन है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोग अभी सब कुछ अपना व्यवसाय छोड़कर यहाँ पर आके भिक्षुक बने, उनके हम नकल नहीं कर सकते, उनके भाव को पकड़ सकते। सब कुछ होते हुए भी पांडव कैसे थे, भगवान से अनुरक्त थे, भगवान पे समर्पित थे। कभी भी उन्होंने सही सिद्ध कर दिया पूरे विश्व के लिए कि वो भगवान से ही आसक्त थे, राज्य के लिए आसक्त नहीं थे। जिस राज्य के लिए उन्होंने 18 दिन युद्ध किया महाभारत का और करोड़ों लोगों का संहार किया। लोग समझते कितने कितने स्वार्थी लोग हैं। देखो एक युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, इतना सब उन्होंने छल कपट किया, ऐसे लोग बोल सकते हैं जो ईर्ष्या करते हैं उनसे। लेकिन जैसे ही भगवान अंतर्धान हो गए उसी समय सब छोड़कर चले गए। सारा विश्व का चक्रवर्ती पद था उनके पास, सम्राट का, सभी भाई दो थे, इतने ऐश्वर्य संपन्न हो गए थे, एक ही क्षण में सब छोड़ के चले गए। यही उसका प्रूफ है कि उनको उसमें आसक्ति नहीं थी, उनको केवल भगवान में आसक्ति थी। जब जंगल में थे तो वे भगवान के पास थे भावना से और भक्ति से, जब राज्य बने राजा बने तभी भी वो भगवान के पास थे, और जब भगवान चले गए तो सब कुछ छोड़ के भगवान के पीछे चले गए। तो इसलिए जो ये भगवान की लीलाएं हैं ये भगवान का और भगवान के भक्त का दोनों का गौरव करती है, दोनों की महिमा को बढ़ाती है। इसे हम देख सकते हैं कि जब भी यशोदा मैया डांटती हैं कृष्ण भगवान को तो उसमें दोनों की महानता दिखाई पड़ती है। अरे वो भगवान जो है वो सबके मालिक है, वो डांट खाने के लिए यहाँ बालक बनकर आए, कितनी बड़ी बात है सोचो आप, कितनी नम्रता है भगवान के अंदर, प्रेम के लिए कितने प्यासे हैं वो, उस प्रेम की गाली सुनने के लिए वो बालक बनकर डांट भी खा रहे, और माता और पिताजी का कितना बड़ा स्थान है कि साक्षात परब्रह्म उनकी भक्ति के लिए उनकी गाली सुनने के लिए बालक बनकर आते हैं। वेदों की रुचाओं के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है वो उनके लिए छोड़ के आते हैं। कहते हैं कि ब्रजवासियों की जो डांट है मुझे बहुत पसंद है, रुक्मिणी को और अपनी पटरानियों को बताते हैं कि जो माँ मुझे कुछ कुछ सख्त खाना हुआ करता था उसको चबा कर नरम करके निकाल के मुझे खिलाती थी, जैसे पंछी करते ना पंछी, वैसे चबा कर नरम करके अपने पिल्ले के मुंह में डालते हैं और उसी से उनको बड़ा करते हैं। तो कुछ कुछ सख्त पदार्थ हुआ करते थे वो चबा कर प्रेम से नरम करके उनको बालक के मुंह में डालते थे। तो रुक्मिणी को भगवान कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा प्रसाद बनाती हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे प्रसाद में कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, इतना स्वाद है अमृत तुल्य जो है। लेकिन फिर भी वो आनंद जो मुझे नंदगांव में आया करता था बाल्यावस्था में वो नहीं आता है इसके अंदर, हकीकत है, क्या कर रहे हैं इसको, सच है ये, वो झूठ मूठ को पत्नी को बहाने के लिए थोड़ी झूठ बोलेंगे। यहाँ पर भी आनंद आ रहा है बहुत, लेकिन वो आनंद कुछ और था। रात को उठकर रोते थे वो, मैया को याद करते थे, पिताजी को याद करते थे। तो पत्नियों को लगना स्वाभाविक था कि अरे हमारे प्रेम में कुछ कमी है क्या, हमारे सेवा में कुछ कमी है, बता दो, हम आपको हर कमी को पूरा करने को तैयार, आप आपके आनंद के लिए सब कुछ करने को तैयार। फिर भी वो कहते थे वो नहीं समझ पाओगे आप, जो मुझे पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर गोपियाँ और ब्रजवासी पीड़ित थे, भगवान भी बहुत पीड़ित थे जब यहाँ से गए। द्वारका नगरी में एक नदी है गोमती नदी, वो केवल भगवान के अश्रुओं से बनी है। भगवान में भगवान जब ब्रजवासियों के विरह में अश्रु बहाते थे उसकी नदी बनी हुई वहाँ पर। जब लौट के आए तो उन्होंने गोपियों ने बोला कि आप, हमने सुना था कि आप बहुत रोते थे वहाँ पर, नदी वदी बनी हुई है वहाँ पर आपके रोने की, यहाँ प्रकट करके दिखाओ। तो भगवान ने उस गोमती नदी को द्वारका के सागर को कोशी में प्रकट किया है। यहाँ पर 25 किलोमीटर आगे कोशी है, थोड़ा सा शहर जैसा है, वहाँ पर नंद महाराज का कोष हुआ करता था, ट्रेजरी हुआ करती थी। तो वहाँ पर भगवान ने द्वारका को प्रकट किया है। तो ये प्रेम का सब संबंध है। और रात रात में उठते थे तो गोपियाँ पूछा करती थी, अरे क्या बात क्या है, आप इतने ललिता विशाखा तुंग विद्या धनिष्ठा पुरंगाक्षी चारुकेशी ऐसा क्यों पुकार रहे हो, क्या हमारे प्रेम में कुछ कमी है क्या, क्योंकि वो सब भाग्य लक्ष्मियाँ थी, साधारण स्त्री नहीं थी वो, रुक्मिणी सत्यभामा बहुत ऊंची हस्तियाँ थी। तो भगवान कहते हैं कि बताओ, वो कहते थे भगवान को कुछ बताओ क्या कारण है ऐसा आप करते हो। बोले योग्य समय पर बताएंगे आप, अभी मौका है तो बता देंगे आप। तो एक दिन द्वारका के सभा में बैठे थे तो उनको सर दर्द हुआ। सर दर्द का तो बहाना था, गोपियों को कुछ सिखाना था। तो सर दर्द कर बैठ गए सर पकड़ के भरी सभा में, सब परेशान हो गए। राज वैद्य आए, सब उनके बड़े बड़े लोग जो हैं पदाधिकारी, हाँ अधिकार प्राप्त लोग आए, उन्होंने अपना इलाज किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बहुत परेशान हो गए। तो ये बात महलों में पहुंची, जहाँ पर पत्नियाँ थी, सब पत्नियाँ आ गई। पर क्या हुआ स्वामी को, सर दर्द हो रहा है बहुत भयंकर, कुछ करना चाहिए। तो सब सरानियाँ जो एकदम व्याकुल हो गई कि स्वामी को कष्ट हो रहा है, उनको खाना पीना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो कुछ भी करने को तैयार है। तो नारद मुनि आते हैं, वो भी देखते हैं कष्ट हो रहा है भगवान को, बोले क्या किया जाए। सब जगह जाते हैं, गांव गांव में हकीम वैद्य को बुला लेते हैं, जो भी अपना अपना इलाज करते हैं, कुछ नहीं होता है। कुछ देर बाद नारद मुनि को एक मन में विचार आता है कि अरे हमने उनको पूछा ही नहीं है, तो सर्वज्ञ हैं वो, सर्वज्ञ कृष्ण हैं, सब जानते हैं, तो उनको ही पूछना चाहिए कि उनके सर दर्द का इलाज क्या है। बोले महाराज जी आप बताइए आपके सर दर्द का इलाज क्या है, पर आपने पूछा ही नहीं तो कैसे बताऊंगा, आप अपनी मर्जी से इलाज करते जा रहे हो, मुझे पूछा ही नहीं, आप पूछा जाए तो बता देता हूँ। ये सब जड़ी बूटियाँ तुम्हारी जो है कुछ काम की नहीं है, ये सर दर्द विशेष सर दर्द है, इसे स्पेशल सर दर्द है, वो कौन से भी टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है। इस प्रकार का सर दर्द जो है, इसका इलाज भी किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी वैद्य के ग्रंथ में लिखा नहीं है। वो उसका इलाज ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने आप को मेरा भक्त मानता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने चरणों की धूल निकाल कर और चरणों का जल निकाल कर देंगे और मैं उसको अपने सर धारण करूंगा और पी जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इतने समय तक सारे द्वारकावासी सेनापति, सारी 16,108 पत्नियां सब तैयार थे, तत्पर ऐसे क्या किया जाए, आप बताओ खाली, बस आप बताओ। जैसे ही उपाय सुनते हैं सब पीछे हट जाते, तुरंत पीछे हट जाते। अभी तक तो एकदम तत्पर थे, सब कुछ खाना पीना सब त्याग करके खड़े थे, क्या करें। जैसे ही ये सुनते हैं तो पीछे हो जाते। नारद मुनि पूछते हैं अरे रानियों आप तो कह रहे थे कुछ बताओ उपाय, हम करने को तैयार हैं। बोले कैसे ये उपाय करेंगे, वो तो हमारे स्वामी हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, हमने उनसे विवाह किया है, हम उनकी पत्नियां हैं, उनके चरण के रज लेकर माथे पर लगाना हमारा कर्तव्य और धर्म है, और ये काम कैसे हम कर सकते हैं। अनंत काल तक नरक में यातना भोगेंगे अगर स्वामी के चरणों की ध्वज देने के बजाय अपनी रज और धूल उनको देंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। नारद मुनि भगवान ने कहा जाओ द्वारका में किसी को पूछो, सब मेरे भक्त हैं द्वारका में, सब द्वारका घूम के आए, किसी ने भी रज नहीं दिया संकोच के मारे। लौट के आए, बोले भगवान अभी क्या करें। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन गए क्या आप, तो वृंदावन तो नहीं गया, तो वृंदावन जाओ वहाँ ट्राई करो, वहाँ पर भी मेरे भक्त रहते हैं, वहाँ जाओ वहाँ पूछ के आओ, दौड़ी लगा दो। दौड़ी लगा दी वृंदावन में जाके कि भगवान द्वारकाधीश को श्याम सुंदर को सर दर्द हो रहा है और उसका उपाय ये है कि जो कोई अपने चरणों की रज दें, चरण धोकर जल दे दें तो उसके सेवन करने से इनका सर दर्द मिट जाएगा। तो ऐसे जैसे ही ऐलान खत्म होता है तो क्या देखते हैं, वहाँ द्वारका में सब पीछे पीछे हट रहे थे, यहाँ पर सब आगे आगे आ रहे हैं, एकदम उल्टा हो रहा है। हजारों लाखों गोपियां आ रही हैं, सब लोग आ रहे हैं और ये मेरे चरण ले लो, मेरे चरण के धूल ले लो, मेरे चरण के धूल, कोई जल में जाके पानी रख रहा है, पानी में पांव डाल रहा है, वहां से आके मट्टी में जा रहे हैं, वहां से आके लो लो ये खुरच खुरच के ले लो, जितना सब जाके गीला कर रहे हैं, मट्टी में जा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर गीला कर रहे हैं, मट्टी कर ले लो, अरे इतनी नहीं चाहिए थोड़ी सी चाहिए, तो नहीं आगे भी काम आए ले लो, एक स्टॉक रख लो अपने पास, बार बार फिर यहाँ आना होगा, दंड लगाना होगा, इतना कष्ट उतना टाइम में होगा उनको, इसलिए ये दवा जो है स्टॉक में रखना, उधर कभी भी लगेगा तो ले लेना। तो भी इनको परेशानी क्या हुई कि ठीक है स्टॉक रखने की बात तो सही है, लेकिन ले जाऊं कैसे अकेला मैं यहाँ से, इतना सारा ढेर जमा हो गया उधर रज का। तो ले गए उसको उठाकर, तो भगवान ने कहा ये क्या लेके आ रहे हो, बोले तो ढेर ढेर है सब रज का ढेर है। बोले अरे कैसे प्राप्त हुआ इतना सब, अरे मैं तो हैरान हो गया उनको समझाते समझाते, वो तो सब लोग गिला कर कर के ड्रेस लगा लगा के दगा लगा के दे रहे थे मुझे, और मैं उनको नाराज नहीं कर पाया, सब लेके आना पड़ा मुझे, क्योंकि तो सबको आपको रज देने की इच्छा थी, इतनी हजारों करोड़ों गोपियां थी, सब लोगों को अपना अपना कर्ण देने की इच्छा थी, एक कर्ण मात्र के लोग हमारा भी लग जाए। तो उन्होंने कहा, हमने गोपियों से पूछा कि आपको डर लगता नहीं क्या इसको करने में, बोले क्या होगा, आप नरक में जाओगी और नरक में यातना भोगोगे अनंत काल तक। थोड़ा अच्छा, अनंत काल तक यातना भोगेंगे, बोले कोई बात नहीं, अगर हमारे ठाकुर जी का सर का दर्द परमानेंट नहीं, अगर एक क्षण के लिए भी अगर कम होता है ना, तो हम उस एक क्षण के लिए भी उसका दर्द निवारण करने के लिए अनंत काल तक नरक में यातना भोगने को तैयार है। वो सर दर्द को मिटाने का भी क्या करते हैं उसको, ऐसा गर्व नहीं कर रहे कि हाँ सर दर्द मिट जाएगा फिर हम जाएंगे, वो कहते हैं सर दर्द में अगर 1% भी कमी आती है हमारे इस त्याग से, तो हम अनंत काल तक स्वर्ग में नरक में यातना भोगने को तैयार है। तो फिर भगवान की सब रानियां वहां बैठी रहती हैं, क्योंकि उनको दुख तो है ना, सर दर्द हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सबके सामने भगवान वो रज सर पे लगाते हैं, सर पे लेप करते हैं और जल पी जाते हैं और सर दर्द ठीक हो जाता है, और बड़े ही सहेतुक नजर से सब पत्नियों को देखते हैं, वेरी मीनिंगफुली ही सीज ऑल द क्वींस। अभी समझ में आया ना कि रात रात में मैं कुछ रखता हूँ उनके नाम से, आप पूछते थे ना, मतलब वो बोल नहीं रहे कुछ, नजरों से ही बातें हो रही है। आपने कई बार पूछा है, रात में उठते हो, कभी भोजन करते करते रोते हो, रात को बीच में उठ के चले जाते हो कहीं, एक बार बीच में उठ के गए थे निकल के, जिसका रहस्य ये है प्रेम, ऐसा प्रेम है ब्रजवासियों में, ब्रजवासियों का, इसलिए वो उनका हृदय यहाँ पर है, वृंदावन छोड़कर भगवान एक कदम में बाहर रखते नहीं, कभी भी नहीं रखते, उनका शरीर चला गया यहाँ से द्वारका, लेकिन भाव रूप में वो नहीं गए यहाँ से, सब गोपियों के हृदय में रहे, सब ब्रजवासियों के हृदय में रहे। वो कहते हैं मुझे सब ब्रजवासियों का इतना मोह है, इतना प्रेम है, इतनी माया है मुझे, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, मैं इनको नहीं भूल सकता हूँ, ना इनके बिना मेरा एक क्षण जाता है जीवन का। तो ऐसे नंद महाराज, यशोदा, सब बाल बाल उनके प्रेम के वश तो है, इनका प्रेम इतना गाढ़ा है कि यहाँ का जो भी ऐश्वर्य भगवान कभी कभी दिखाते हैं, वो भी वो दब जाता है उस प्रेम से। जैसे भगवान ने गिरिराज को उठाया तो सबको लगा कितने महान देवता होंगे, शायद कोई ऋषि मुनि होंगे, कोई सिद्ध पुरुष होंगे, ऐश्वर्य दिखाया ना, शक्ति दिखाया कि भाई शक्ति से एक इतनी सी उंगली में 7 दिन 7 रात इतना भयंकर भयानक पर्वत जो था, भयानक मतलब शक्ति वजन से उठा के रखा, तो कोई ऐश्वर्य दिखाया ना, बल दिखाया कि नहीं, तो बल तो वैकुंठ का लक्षण है। जैसे ऐश्वर्य प्रकट हो गया तो सब लोग बोलने लगे, अरे तो तुम्हारा बालक तो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है या कोई देवता है। नंद महाराज तुरंत उसको काट देते हैं, तुरंत जोरदार पेट पकड़ के हंसते हैं, बोलते ये तो देवता है, ये तो जाके जाके घर घर के लोगों के अंदर जाके पेशाब करता है जब उसको मक्खन नहीं मिलता है, जब मक्खन चोरी में असफल होता है तो बालकों को जाके चिमटा लगा आता है, कान में पानी डालता है, उनके नींद में से जगा देता है, ये कोई देवता के गुण है क्या? और देवता लोग तो कितने निर्भय होते हैं, हाँ डरते नहीं है कभी भी, और ये देवता हमारा घर का, जैसे बादल में आज बिजली झड़कती है तो भाग के माँ के गोद में आता है डर के मारे। तो ऐश्वर्य की बात निकलती है तो माधुर्य उसको काट देता है, खत्म कर देता है। हाँ भगवान भी कभी कभी थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, जब अंतर्धान हो गए बसंती रास करके, अभी बसंत तो शुरू हो गया है, तो चंद्र सरोवर में रास करते हैं, वो तो चंद्र सरोवर में रास करते बीच में अंतर्धान हो जाते हैं, तो गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। हाँ सब लोग पूछते हैं लताओं से, पताओं से, पंछियों से, पक्षियों से, कहीं तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है, किस तरफ गए वो, कहीं तुमने हमारे श्याम को देखा है, तो वो व्याकुल हो जाते लता पता सब। तो भगवान भी मजाक करने के लिए, सब गोपियों का हंस फरियास करने के लिए चतुर्भुज विष्णु करके खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐश्वर्य का रूप आ गया ना पूरा, शंख चक्र पद्म गदाधारी अलंकारधारी मुकुटधारी और पीताम्बर वस्त्र धारण करके शस्त्र अस्त्र से अलंकार से सुशोभित भगवान खड़े हैं। वो सभी ब्रजवासियों को पूजनीय है, क्योंकि वो उनके नंद बाबा भी पूजा करते हैं विष्णु की, तो विष्णु तो आराध्य है ही, लेकिन आराध्य से जो प्रेम के पूजनीय है वो कृष्ण है। तो विष्णु खड़े हो गए उधर चतुर्भुज, तो सब गोपी आके उनको पूछ रहे हैं आपने कहीं शाम को देखा है, तो क्या कहेंगे विष्णु, उम्मीद क्या है कि वही विष्णु को देखने दंडवत प्रणाम करेंगे, कुछ लोग वो गाएंगे प्रार्थना करेंगे, लेकिन इनका प्रेम इतना गाढ़ा है कि वो केवल उनको पूछ रहे हैं जो उन्होंने लता पताओं से पूछा था, पंछी से पूछा था, वो भी उनको भी पूछ रहे हैं, और एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि आपने कहीं शाम को देखा है, किस तरफ गए। तो विष्णु जी अपने चार भुजाओं में से एक भुजा कह के बोलते हैं यहाँ गए हैं इस दिशा में गए, तो उनको जरा सा भी दंडवत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सीधे से निकल जाते हैं उसी रास्ते से। उसके बाद मतलब ये भगवान विष्णु के रूप में भी व्याकुल हो रहे हैं, कितना प्रेम है, लेकिन फिर भी अपना विष्णु का स्वरूप ऐसे बनाए रख रहे हैं कोशिश करके एकदम ऐसा, इज मेंटेनिंग इज विष्णु फॉर्म। तो फिर लास्ट में राधा रानी आती है, राधा रानी इतनी व्याकुल है कि भवरे से बात करते करते आ रही है, भवरा ऐसा गोल गोल घूम रहा है और भवरे से बात करते करते आ रही है, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है, देखा तुमने, अरे तुम भी सांवले हो, तुम भी शाम हो, कहाँ है मेरा शाम बताओ, ऐसे करके पूछ पूछ के आ रही है। तो वो भवरे से बात करते हुए राधा रानी को देखकर ही बड़े व्याकुल हो जाते हैं, और फिर वो राधा रानी पूछते हैं कृष्ण कहाँ गए हैं, तो इनकी दो भुजाएं जो है पिघल जाती है, ही कैनॉट मेंटेन हिज फोर आर्म फॉर्म, चार भुजाओं का रूप जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, अपने आप सारा ऐश्वर्य निकल जाता है उनका और दो दो द्विभुज बन जाते हैं, द्विभुज। तो कृष्ण कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पर ऐश्वर्य को टिका नहीं सकते, ऐश्वर्य उनका यहाँ पर टिक नहीं पाता है, इतना प्रेम है, अपनी भगवत्ता जो है वो प्रकट करना चाहते हैं, फिर भी इनका प्रेम इतना है कि वो भगवत्ता लुप्त हो जाती है। इतना भी महान कार्य करते हैं तो बोले कि हमारा करना है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जानते नहीं कि वो भगवान है, और ना जान सकते हैं, ना उनको जानने का व्यवस्था यहाँ पर है। तो राधा गोविंद जी महाराज बताते हैं अपनी कथा में कि ऐश्वर्य एक वस्तु होती है, तो समझो उसको उष्णता के रूप में कह सकते हैं, और माधुर्य और प्रेम जो है वो ठंडक के रूप में कह सकते हैं। तो ठंडक प्रेम की इतनी है कि वो ऐश्वर्य की अग्नि हमेशा बुझी रहती है, और वो उस ऐश्वर्य का जो सत्य है वो कोई जान नहीं पाता है, बोलते हमारा कहना है, कंधे पे चढ़ जाते हैं उसके, दंड देते हैं उसको, डांटते हैं। तो ऐसी है भूमि नंदगांव की, यहाँ पर भगवान के प्रॉपर सखाओं ने और वाल वालों ने और गोपों ने इतना प्रेम किया है, जगह जगह जाकर भगवान यहाँ माखन चोरी करते हैं, सब सखियों का और सखाओं का यहाँ पर प्रेम है भगवान के प्रति। यहाँ का जो आपने दर्शन किया ऊपर वो दर्शन है परा परिवार का दर्शन है, नंद बाबा हैं राइट साइड में हमारे खड़े हैं, फिर उनके बाजू में बलराम बलदाऊ जी हैं, उनके बाजू में कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण भगवान के साइड में नंद शुदा रानी खड़ी हैं, और उसके अगले कोने में राधा रानी हैं, सब विश्व में राधा कृष्ण का दर्शन है, लेकिन यहाँ पर राधा रानी ससुराल के भाव पे हैं, ससुराल में खड़ी है, तो संकोच से मर्यादा से बाजू में खड़ी, इस तरफ से धन सुखा मन सुखा श्रीधामा और मधुमंगल खड़े हैं। सबों ने उनकी आंखों को देखा क्या, कहाँ देख रहे हैं वो, हाँ वो आपको नहीं देखते हैं, नंद बाबा अगर आपको देख रहे हैं आप उनको देख रहे हैं, लेकिन धन सुखा मन सुखा कहीं और देख रहे हैं, उनका ध्यान केवल लड्डू पर है, यहाँ लड्डू बनते हैं, बंटा भोग बनता है यहाँ पर, और राधा रानी बनाती है। मैंने आपको कल बताया था ना कथा कथा, इनको वरदान प्राप्त हुआ था, रोज यहाँ पर आती थी वो, तो कभी कभी कमरे भर के लड्डू बनाती थी, क्योंकि वो लड्डू ऐसे थे कि जो जब चाहे मन करे तब खाने को मिलना चाहिए, उस पर तुलसी का भी लगाते नहीं, तुलसी लगाते नहीं उसके ऊपर, क्योंकि तुलसी लगाते तो भोग हो गया ना, फिर वो नया तुलसी लगाना पड़ेगा, तो परमानेंट तुलसी का एक आदमी खड़ा करना पड़ेगा उधर, परमानेंट लड्डू चेंज करते करते तुलसी लगाते लगाते, तो तुलसी लगाते नहीं है उसके ऊपर, ताकि रात में दिन में बीच रात में कभी भी जग जाएं और मिठाई खाने का दिल हो तो रेडी होना चाहिए वहाँ पर, इसलिए वो बहुत कमरा भर के लड्डू बनाती थी। तो कुछ लड्डू उसमें से कपाट में रखते हैं, तो उनके अंदर उस कपाट में रहती है, कब कपाट खुलेगा और नए लड्डू निकलेंगे, इतना बड़ा होता है वो, देखा आपने दर्शन किया क्या, अभी आएगा वो आपको दिखाऊंगा कुछ लड्डू मैंने मंगवाए प्रसाद के लिए, वो लड्डू जो है इन गोसाइनों, ये गोस्वामी जो है अभी पता नहीं कहाँ आए थे, यही इन्होंने ही यही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मैंने आपको जो कल कहानी बताई थी ना यशोदा मैया की, उन्होंने बताया था यशोदा मैया के पास जाओ प्रार्थना करो कल से जल्दी उठने लगो, यही वो स्वामी है रमेश चंद्र गोस्वामी। अभी वो 60 साल के ऊपर हो गए, उनके 7 साल की उम्र की कथा है ये। तो ये सब जो गोस्वामी हैं अपने हाथों से नंदलाला की सेवा करते हैं, उनको भोजन बनाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको जगाते हैं, सुलाते हैं, गीत गाते हैं, उनके लिए रोटी बनाते हैं। तो नंद बाबा के मंदिर में जब भोग लगता है तो सबको एक एक थाली लगती है, कृष्ण को भी लगती है, यशोदा को भी लगती है, नंद महाराज को भी अलग अलग थाली लगाते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान की थाली और यशोदा मैया की थाली जो है, यशोदा मैया में ज़्यादा भोग लगाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान कब मन चाहे तभी मैया की थाली से, कब मन चाहे तभी अपनी थाली से खाते हैं, इसलिए उस वैसे पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। और वो मंदिर के अंदर एक शालिग्राम की शिला है, वो आपको कभी पुजारी आपके पहचान के होंगे तो आपको दिखाएंगे उसको। वो भगवान जब नंद बाबा जो थे वो नरसिंह बाबा की पूजा करते थे, नरसिंह भगवान की, क्योंकि बार बार आतंक होता था, बार बार राक्षस आते थे, हमला करते थे, तो फिर वो नरसिंह बाबा की पूजा करना आरम्भ किया उन्होंने, क्योंकि नरसिंह भगवान ने तो प्रहलाद का रक्षण किया था संकट से। तो वह नीचे मंदिर है पहाड़ के नीचे उतरने के बाद में, और शालिग्राम की भी सेवा थी उनकी। तो एक बार नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करते थे, कर रहे थे, तो बीच में से उठ के कहीं चले गए, तो वापस आए तो क्या देखते हैं शालिग्राम शिला है ही नहीं किधर, सब जगह ढूंढते, अरे आसन पे रखी थी, विराजमान था, सब सेवा कर रहे थे, चंदन तुलसी जमुना जल से, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, सब जगह ढूंढते हैं। तो यशोदा मैया कहते हैं कि चोर तो एक ही है पूरा ब्रज में, हमारा ही लड़का है, उसे ही पूछ लो। तो उसको पूछने जाते तो बोलता ही नहीं, कुछ बोल ही रहा है, कुछ बोल रहे शालिग्राम शिला तुमने लिया है, तो कुछ नहीं बोलते, मुँह ही नहीं खोलते। बड़ी देर के बाद में उसके ही मुंह से शिला शालन का मुँह शिला निकलती, बात उस मुंह में रखी रहती और वो मुंह के में रखी हुई जो शिला है वो भगवान के दिव्य स्पर्श से अंदर ही अंदर पिघलती रहती है, ऐसे मतलब दोलायमान एकदम, द शिला बिकम्स मेल्टेड इन अ हाफ मेल्टेड कंडीशन। तो भगवान के दांतों के निशान है उस शिला के ऊपर, अभी जो वो शिला वहाँ पर है अंदर, उसके अंदर भगवान के दांतों के निशान है, क्योंकि भाव में शालिग्राम जी भी पिघल जाते हैं भगवान के स्पर्श से, और जब निकालते हैं तो फिर वो दांत के निशान वाली शिला जो है अभी भी मंदिर में है। अभी हमारे गोसाई जी की सेवा आएगी तो आपको वो अंदर से निकाल के दिखाएंगे। इस तरह से नंदगांव के लीला ही कुछ अलग है। नंदगांव में और एक लीला मैंने आपको कल बताई थी, जैसे प्रभावती जी आती हैं अपने बालक को पकड़ के लेके आती हैं, मतलब भगवान लीला करते हैं। तो एक कांस्टेंट लीला है यहाँ की, गोपियों का आना और यशोदा मैया को शिकायत करना, कांस्टेंट कांस्टेंट शिकायत करना। और कुछ कुछ गोपियाँ जो है वो भगवान का दर्शन करने के लिए नंद भवन में आके क्या करते हैं, नई नई ब्याही हुई बहू है, गोपों के घर में ब्याही हुई औरतें बहुएं हैं, वो जाते हैं, थोड़ा सा अंधेरा होने लगा जाते हैं और अपने बछड़ों को छोड़ देते हैं, और जोर से चिल्लाते हैं, सासू जी को पुकारते हैं, अरे बछड़ा छूट गया, बछड़ा छूट गया, मैं जा रही हूँ बछड़ा ढूंढने के लिए। और बछड़े को लेके जाते हैं हाथ पकड़ के नंद भवन में, वहाँ पर नंदवाला का दर्शन करते हैं, फिर लौट के आते हैं, बोले हो बहुत नंद भवन तक गया था बछड़ा मजा, उसको पकड़ के लाई हूँ मैं, फिर बांध देते, ऐसा है। और भी मुझे गोसाई जी ने कथा बताई थी कि जब ठाकुर जी पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग ठाकुर जी क्या नहीं करते, हर गेम खेलते हैं, ठाकुर जी जब पतंग उड़ाते हैं तो वो इतने कुशल पतंग उड़ाते हैं कि उसको पतंग लीला कहते हैं, पतंग लीला, इतने कुशलता से पतंग उड़ाते हैं कि उस पतंग की छाया हर गोपी के घर में पड़ती है। हो सकता है क्या एक ही पतंग हो और सब गोपी के घर में उसकी छाया पड़ी हो? तो जो छाया पड़ती है, छाया जब पड़ती है हर गोपी के घर पे, तो वो छाया को देखिए गोपियां पागल हो जाती हैं, और वो पतंग ऐसे ऐसे हिलती ना, ऐसे ऐसे देखा ना पतंग ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर वो ऐसे ऐसे हो जाती है, फिर गोल गोल घूमती है, तो ये गोपियां भी ऐसे 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 हिलने लगती है और गोल गोल घूमने लगती है। तो उनकी बहू सासू कहते हैं बाबरी है क्या तुम, पागल तो नहीं हो गई तुम, क्योंकि उनको समझ में आया क्या हो रहा है इसको। वो थोड़ी पतंग को देख रहे हैं, जो बूढ़ी गोपियां हैं वो थोड़ी पतंग देख रहे हैं, जवान गोपियां पतंग देख रहे हैं, उनको पता है हमारे कन्हैया जी वहां से पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पर पतंग की जो है छाया गिर रही है, तो उसको देख के यहाँ से वहां भाग रहे हैं वो, तो ऐसी चटपटी लीला यहाँ पर होती है। सब लोग बहाने बनाने का ढूंढते ढूंढते कि कैसे भी करके कन्हैया का दर्शन हो जाए, दिन रात उनकी छवि हमारे नजरों में रहे, इसलिए भाई कंप्लेन करने के बहाने कभी कुछ मिठाई बना के, कुछ कुछ छोटी छोटी सखियां हैं, वो सखियां ऐसी हैं कि वो बड़ी लंबी कहानी है उसकी, जब भगवान रामचंद्र द्वारका अयोध्या से मिथिला गए थे, वहाँ विवाह होने के पहले विवाह होने के बाद अनेक स्त्रियां उनसे आकर्षित हुई थी, तो वो भी यहाँ गोपियाँ बनी हैं, फिर जब अयोध्या में थे जब सीता जी को विवाह करके लेके आए तो कई स्त्रियां उन पर आकर्षित हो गई, वो भी यहाँ गोपियाँ बनी हुई हैं, जब वहाँ से वनवास में गए तो वनवास में तो ऋषि मुनि थे, वो भी माधुर्य भाव में परिपक्व हो गए थे, जब राम जी का दर्शन किया तो उनके अंदर माधुर्य भाव गोपी भाव उत्पन्न हो गया, तो वो भी प्रकट है यहाँ पर। मैंने आपको बताया ना अयोध्या वासिनी गोपियां कहाँ गई थी, काम्यवन में, कौन कौन गए थे काम्यवन में, काम्यवन में आप लोग गए थे ना अभी परसों, तो अयोध्या वासिनी गोपी क्या बनी, भूल गए सब लोग, अयोध्या वासिनी गोपियां थी वो राजा बिमल की कन्याएं बनी, और करोड़ों कन्या बनी वो, भगवान ने उनका विवाह किया उनसे, उनसे रास नृत्य किया उनके साथ में, उनके आंखों से जो अश्रु निकले उससे बिमल कुंड पैदा हो गया वहां पर। तो ऐसे श्रुति गोपियां थी, श्रुति गोपियां मतलब वेद, स्वयं वेद जो है वो भी व्यक्ति हैं, भक्त हैं भगवान के, तो वो भी भगवान के गुणगान करते हुए, ऐश्वर्य का गुणगान करते हुए करते हुए उनको भी लगा कि भगवान का दर्शन मिलना चाहिए, तो वो श्वेतद्वीप में जाके सब गोपियों ने, सब श्रुतियों ने तपस्या की है। मैं आपको थोड़ी कथा बताता हूँ उसकी, बहुत सुंदर कथा है। हरे कृष्ण। तो जो ऋषि बने थे, ऋषि और ऋषि बनकर उनको भगवान से आकर्षण हुआ, दंडकवन दंडकारण्य की जो गोपियां हैं, जो ऋषि हैं वो गोपी बने, और उन्होंने भगवान से ये मांगा कि जैसा आप सीता पर प्रेम करते वैसा हम पर प्रेम कीजिए, हम आपको वैसा प्रेम करना चाहते हैं। तो उन्होंने, उनकी कथा ऐसी है कि एक मंगल गोप थे नंदगांव में, वो बहुत ही धनी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत दानी भी थे, उनकी 5,000 रानियां थी, लेकिन यथावकाश काल के प्रभाव से भौतिक दुनिया में कोई श्रीमंत रह सकता नहीं है, तो उनके कुछ धन चोरी हो गया, कुछ धन लुट गया, और वो एकदम क्या कहते हैं, गरीब हो गए, बिल्कुल इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं रहा, उनकी गायों का धन ले गए, चोरी चले गए, तो उनके पास 900,000 गाय थी, वो भी चोरी हो गई। तो ऋषिचारी जो गोपियां थी, जो ऋषि थी पहले, वो अभी गोपियां बनी, वो मंगल गोप के घर में उनका जन्म हुआ, वो भी कभी जब वो धनवान थे तभी जन्म नहीं हुआ उनका, जब वो गरीब हुए तो ये सब ऋषिचारी गोपियां उनकी पुत्री के रूप में जन्म हुआ उनका, तो चिंतित हुए, उनके मन में ऐसा विचार आया कि ये मेरी जो कन्याएं हैं इनका विवाह किसी धनी आदमी से करना चाहिए, तब ये समस्या उनको बार बार नहीं आएगी जो मुझे आ रही है, निश्चय कर लिया उन्होंने। तो एक जय नाम के गोप थे, वो मथुरा से आए, और उस गोप ने इस मंगल गोप को नंद महाराज के गौरव का वर्णन सुनाया कि नंद महाराज कितने धनी हैं, कितने ऐश्वर्य संपन्न हैं, उनके घर में कृष्ण नाम के बालक जन्म लिए हुए हैं, उनका भी गौरव सुनाया, तो इनके मन में निश्चय हो गया कि हमारी कन्याओं को किसी भी तरह से उनके घर में जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में जो कन्याएं थी, जो ऋषि पहले थे वो जो गोपी बन के आए हैं, उन सबको नंद महाराज के घर भेज दिया और बोला कि जो सेवा मिलेगी वो करो, ऐसा अच्छी तरह से प्रचार करके भेज दिया उनको। तो ये सभी गोपियां नंद महाराज के घर में गई हैं, किसी ने गोबर निकालने का काम ले लिया, किसी में झाड़ू लगाने का, किसी में दधि मंथन करने का, किसी कंडे बनाने का, ऐसे एकदम जो निम्न सेवा है ये सभी गोपियों ने उनके घर में स्वीकार कर ली। ये भी कुछ विशेष प्रकार के सखियां होती हैं जो भगवान के घर पे जाकर एकदम सामान्य काम कर लेती हैं ताकि दिन भर उनका दर्शन बना रहे। तो ये जो गोपियां हैं उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सेवाओं को लिया नम्र भाव से और कृष्ण का दर्शन किया। जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया उनके मन में उनके प्रति रति उत्पन्न हो गई, वो उनके प्रति आकर्षित हो गई और उनको उसी समय श्री रामचंद्र द्वारा जो वचन मिला था, उनको प्रॉमिस मिला था, उसकी याद आई, स्मृति हुई उनको कि यही है वो। उन्होंने कहा था कि मैं अगले जन्म में कृष्ण रूप में आऊंगा तब आप गोपियां बनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे उनको स्मृति हुई कि यही हमारे रामचंद्र जी थे जो अभी कृष्ण बनकर आए हैं और उनके प्रति हमें रति हो रही है, ये उनके वरदान का उनको याद आया, तो वो सब गोपियां जो हैं वो जमुना जी के पास गईं और जमुना जी ने उनको दर्शन दिया और जमुना जी ने उनको गाइडेंस दिया और जमुना जी के पास बैठ के उन्होंने व्रत किया और जमुना जी दर्शन देकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और जमुना जी के आशीर्वाद से कृष्ण भगवान ने उनके साथ में शरद ऋतु में जो कार्तिक महीने का रथ उनका रस रास रचा है ना बंसी भट्ट में, उन्होंने उनको सहभाग दिया उसमें। तो ये जो है ऋषिचारी गोपियों की कहानी है और पंचवटी में जब वो रहे थे तभी कुछ भिल्ल औरतों का भी उनके ऊपर बहुत मोहित हो गई थी, वो उनकी पुलिंद जाती है, पुलिंद वो भी गोपियां बनी हैं। फिर बहुत सारे रामचंद्र भगवान ने यज्ञ किए थे, उस यज्ञ के समय सीता जी को वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भेज दिया गया था किसी कारण, तो उस समय जितना भी यज्ञ किए उन्होंने तो हर एक समय एक एक सीता की मूर्ति बनाई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, उस पर प्राण दिए उनके अंदर और उनकी सहायता से यज्ञ किए, कई अन्य यज्ञ किए, तो ऐसी कई यज्ञ सीताएं उत्पन्न हुई थी। तो सीता जी लौट कर आई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने आपने बड़ी सेवा की है, आपने इनका अंगीकार भी किया है, पाणी ग्रहण भी किया है, इनके संग बैठ कर यज्ञ किया है पत्नी के रूप में, तो इन पर भी कृपा कीजिए आप। तो ये यज्ञ सीता जो है ये सब वृंदावन में आई हैं, इनका जन्म हुआ है वृंदावन में, वृंदावन के गोपों के घर में जन्म हुआ है और ये कृष्ण का दर्शन करती है और मोहित हो जाती है और राधा रानी को आकर मिलती है कि आपके पास वो कैसा मंत्र है जिससे आपने कृष्ण का हृदय जीत लिया है, हरे कृष्णा। तो वो कृष्ण राधा रानी उनको एकादशी का व्रत का महिमा सुनाती है, 26 एकादशियों का वर्णन करती है और कैसे वो व्रत करना है वो बताती है, गर्ग संहिता में विस्तार में उसका वर्णन दिया है। और वो यज्ञ सीताएं जो है वो एकादशी का व्रत पूरा करने के बाद में कृष्ण से कृष्ण का हृदय जीत लेती हैं और उनको रासलीला में प्रवेश मिलता है। जब भगवान वैकुंठ में गए तो वैकुंठ की स्त्रियां भी उनसे आकर्षित हुई थी, लेकिन वैकुंठ में वही प्रॉब्लम था जो वो रामचंद्र भगवान को था, क्योंकि वैकुंठ में केवल लक्ष्मी का ग्रहण करते हैं और किसी को ग्रहण नहीं करते हैं। जब कृष्ण बनकर आते हैं तो वैकुंठ की स्त्रियां जो हैं वो भी आकर वृषभानु महाराज के जो घर में जो गोपियाँ थी जो उनकी घर में मेनियल सेवा करती थी वो सब लक्ष्मी की सहेलियाँ हैं वैकुंठ की। इस तरह से जगह जगह जहाँ पर वृंदावन में नंदगांव में बरसाने में और काम में वन में अलग अलग प्रकार की गोपियाँ अलग अलग रूप में आई हुई हैं। जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तब जो मत्स्य रूप में वो वेदों को बचा रहे थे तब अनेक समुद्र कन्याएं उनसे मोहित हो गई थी, वो समुद्र कन्या भी कृष्ण रूप में गोपियाँ बनकर आई है। और जब भगवान ने नर नारायण ऋषि बनकर हिमालय पर तपस्या किया तब देवताओं की अप्सराएं बहुत मोहित हो गई थी, तो वो अप्सराएं भी गोपियां बनकर आई हैं। और जब भगवान बलि महाराज का उद्धार करके उनको सुतलोक में भेज दिया, भगवान उनके पीछे पीछे आकर उन्होंने द्वारपाल का सेवा किया है सुतलोक में, वामन के रूप में बलि महाराज के लिए वो द्वारपाल बने हैं, तो वहां पर सुतलोक की कन्याएं भी उनसे मोहित हो गई थी। तब भी उन्होंने कहा कि आप कृष्ण के अवतार में आइए, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कृष्ण अवतार जो है एकदम परिपूर्ण है। हाँ, हर जीव की हर इच्छा पूरी करना भगवान के हर अवतार को मुमकिन नहीं होता है। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। और भगवान का हर जो अवतार है वो जीव को परिपूर्ण मुक्ति देने में भी पूर्णता समर्थ नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए परमानेंट श्योरली भगवान का हर अवतार जीव को मुक्ति नहीं दे सकता है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, हिरण्यकश्यप का वध किया, दोबारा आएगी नहीं वो, रावण कुंभकर्ण बन के। फिर रावण कुंभकर्ण का कृष्ण ने वध किया, सॉरी रामचंद्र ने भगवान ने वध किया, फिर दोबारा आए ना वो शिशुपाल और दंतवक्र बन के। इस तरह से कृष्ण भगवान जो है वो हर तरह से परिपूर्ण है, और वो हर जीव की हर प्रकार की इच्छा कृष्ण अवतार में, अपने परिपूर्ण अवतार में, पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार में पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। हाँ, इसलिए जो कृष्ण को भजते हैं उसे किसी और को भजने की आवश्यकता नहीं होती। जो जो इच्छा आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उन सब की उनसे भी अधिक इच्छाओं की पूर्ति वो कर सकते हैं, ये कृष्ण भगवान की महिमा। इस प्रकार से अनंत प्रकार की गोपियाँ जो हैं वो भगवान की, तो मैं आपको श्रुतियों की कहानी सुना रहा था, वो अधूरी रह गई। तो श्रुतियाँ मतलब क्या? शास्त्र, वेद शास्त्र। वेद शास्त्र में अधिक करके भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन दिया है। वेदों में भगवान की ब्रजलीलाओं का वर्णन नहीं दिया है। ब्रजलीला का वर्णन का स्कोप वेद में नहीं हो सकता है। इट्स लाइक ग्रेजुएशन में पीएचडी का विषय नहीं आ सकता है। उसी तरह से वेदों में केवल भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, अनंत अवतारों का वर्णन है, लेकिन ब्रजलीलाओं का वर्णन जो है वेदों में नहीं आता है। तो ये वेद यानी श्रुतियाँ, यानी कि जो ध्वनि के रूप में, उपदेश के रूप में, श्लोकों के रूप में, ऋचाओं के रूप में प्रकट होती है, तो वो श्रुतियाँ थी। तो श्रुतियों ने भगवान का ऐश्वर्य का तो अनुभव किया था, लेकिन भगवान की और कृपा प्राप्त करने के लिए वो श्वेतद्वीप नाम के वैकुंठ में गई, जो इस ब्रह्मांड में होता है। क्षीर सागर में जब भगवान निवास करते हैं तो उस क्षीर सागर में एक आइलैंड होता है, द्वीप, टापू होता है, उसके अंदर भगवान शिरोधकशायी विष्णु विराजमान रहते हैं। तो वहां जाकर उन्होंने तपस्या किया है, तो उनको भगवान ने सहस्त्रपाद विराट रूप में दर्शन दिया। तो भगवान का ऐश्वर्य रूप देखकर उन्होंने कहा कि आपका बहुत जो आनंदमय रूप है उसका हम दर्शन करना चाहते हैं, ये तो ऐश्वर्य का रूप है। तो यहाँ पर आचार्यगण टीका करते हैं कि भगवान निराकार हो या साकार हो, या भगवत स्वरूप हो, दो दो भुजा वाले हो, चार भुजा वाले हो, भक्तों को तो केवल प्रेम संबंध चाहिए। जब प्रेम संबंध है तो अच्छा है, बाकी भक्तों को और कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो श्रुतियों ने कहा कि हम आपके ऐश्वर्य को अनंत काल से समझते आ रहे हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं अपने श्लोकों के द्वारा। तब भगवान ने उनको गौलोक धाम वृंदावन का दर्शन कराया, वहाँ के लीलाओं का दर्शन कराया, वहाँ के उत्सव का दर्शन कराया, वहाँ के रास नृत्य का दर्शन कराया, गौलोक धाम का पूरा दर्शन कराया उन्होंने अपने दो भुजा वाले सुंदर माधुर्य संपन्न रूप से। तब श्रुतियों के अंदर माधुर्य रस उत्पन्न हुआ, ऐश्वर्य रस को पीछे छोड़कर गोपियों के हृदय में माधुर्य रस उत्पन्न हो गया। तो भगवान ने कहा, तब उन्होंने कहा भगवान को, अभी आप हमें जो दिखाया है उसमें प्रवेश देने की कृपा करें। आपने हमको रास का दर्शन कराया है, उत्सवों का दर्शन कराया है, तो हमको भी आनंद दीजिए आप। भगवान ने कहा जब हम कृष्ण मन कराएंगे तब आप हमारे लीलाओं में भाग ले सकते हैं। तो ये श्रुतियाँ ब्रज में जो गोपाल थे उनकी कन्याएं बनी, और ये श्रुतियाँ फिर उन्होंने भगवान के रास में भाग लिया है। और इनके जीवन में वो कहानी आती है, वो सुंदर कहानी मैं आपको बताता हूँ मैं, कि ये श्रुतियाँ जो गोपियाँ बनी हैं वो पूरी श्रुतियाँ गोपी श्रुति गोपियाँ वो सब जमुना जी के पास आती हैं। तो भगवान उनको मिलते हैं क्योंकि दुर्वासा मुनि आते हैं ब्रज में, और दुर्वासा मुनि जमुना जी के पार रहते हैं। तो कृष्ण भगवान उनको आगे बताते हैं कि दुर्वासा जी आए हैं, वो उनसे उनकी आप सेवा करना, बड़े मैं उनकी सेवा करके आ रहा हूँ, आप उनकी सेवा करना। तब जमुना जी को बाढ़ आ रही थी, तो सब लोग जमुना जी के पास पहुँचती हैं, और कृष्ण भी आते हैं तो कहते हैं कृष्ण भगवान कैसे यमुना जी को पार करेंगे, इतनी बाढ़ आ रही है, हमने तो इतने बड़े बड़े व्यंजन बनाए हैं, इतने अच्छे खाद्य पदार्थ बनाए हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यमुना जी से कहो कि अखंड ब्रह्मचारी कृष्ण आपको रास्ता देने के लिए विनती कर रहे हैं। तो गोपियों को आश्चर्य होते मन में, अरे इतनी सखियां, अनंत करोड़ों सखियां क्या क्या लीला करते रहते हैं उनके साथ में, ब्रह्मचारी कैसे? तो कहते आप बोलो सही, बोलने में क्या है। तो फिर जाते हैं सब गोपियां और यमुना जी से कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी व्रतधारी विरक्त कृष्ण जो है वो रास्ता मांग रहे हैं। तुरंत यमुना जी रास्ता देती हैं, सब गोपियां अपने सर पर कटोर टोकरियां मटके धारण करके चले जाते यमुना पार। मन में आश्चर्य उनके, ऐसे कैसे हुआ। तो वहां गए तो दुर्वासा जी थे, उन्होंने खूब सेवा की उनकी, उनको चमर डुलाया, उनको गीत गाए, उनको भोजन कराया, बहुत अनंत व्यंजन लाए थे, वो सारा खा गए दुर्वासा मुनि। एक व्यक्ति इतना भी खा सकता है, उनको भी आश्चर्य हुआ। लेकिन उनकी सेवा करने आए थे, बहुत खुश हो गए वो कि सब हमारा सेवा स्वीकार कर लिया उन्होंने। और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया कि आपको कृष्ण की कृपा मिलेगी, कृष्ण का सान्निध्य मिलेगा, कृष्ण का लीलाओं में भाग मिलेगा। बड़ी प्रसन्न हो गई वो। जब लौटने लगी तभी फिर बाढ़ आ गई है, पूरी बाढ़ है यमुना जी में। तो दुर्वासा जी से पूछती हैं हम वापस कैसे जाएं? तो वो कहते हैं उनको कहना जो केवल दुर्वा ग्रहण करते हैं, दुर्वा के अलावा कुछ नहीं पाते हैं, वो दुर्वासा जी आपसे रास्ता मांग रहे हैं। अरे अभी तो हमने इतना अनंत व्यंजन उनको पवाए, पेट भर के खाया उन्होंने, हलवा पेड़ा बर्फी पूड़ी हलवा सब सब्जियां रस सब कुछ खाया उन्होंने, इतना ढेर सारा प्रसाद लिया उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि केवल दुर्वा हार करते हैं, वो नाम दुर्वासा क्यों है, क्योंकि दुर्वा जो होता है ना दुर्वा दर्भांकुर, केवल वही खाते हैं वो दुर्वासा जी आपसे रास्ता मांग रहे हैं। तुरंत यमुना जी रास्ता देती। फिर आश्चर्य की बात, अरे ये क्या हो रहा है। तो जब यमुना जी को पार करके रास्ते में से निकल दी है, पीछे यमुना भर जाती है दोबर से, तो उस किनारे में कृष्ण भगवान खड़े हैं। अरे ये क्या रहस्य है। तो उन्होंने कहा कि मैं आप सब में मेरा प्रेम है, लेकिन मैं आप किसी से भी आ सकते नहीं, इसलिए मैं आप सबके साथ रहते हुए भी ब्रह्मचारी हूँ। चलो ठीक है, आपकी बात समझ गए। उनका क्या, दुर्वासा जी का, आपकी तो मन के अंदर की बात क्या है आप ही जानते हैं, क्या अरक्त है विरक्त है क्या है वो आप ही जानते हैं, हम मान भी सकते हैं। लेकिन दुर्वासा जी का क्या है, वो तो उन्होंने हमारे सामने सब खाया, वो तो स्थूल बात हो गई ना, आपके मन में सूक्ष्म बात है कि आप कह रहे हैं हमको मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि हम विरक्त हैं, चलो ठीक है रास्ता भी मिल गया तो मानना ही पड़ेगा। दुर्वासा जी का क्या, दुर्वासा का क्या है। उन्होंने कहा कि ये दुर्वासा जी इतने विरक्त संत हैं, इतने महान संत हैं कि आप उनको कुछ भी खिलाएंगे तो वो दुर्वा के समान ही उसको मानकर खाते हैं, ये उनकी विरक्ति है। तब जाके वो दोनों को वंदन करते हैं और चले जाते हैं। ये कहानी मुझे मेरे पिताजी ने बहुत बचपन में बताई थी, जब दोबारा मैंने उसको गर्ग संहिता में पढ़ी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे कहानी बताई थी। तो ऐसा, तो ये एक विशेष लीला जो है वो श्रुति गोपियों के द्वारा संपन्न हुई थी। फिर जो मिथिला की थी, मिथिला की गोपियाँ जो मिथिला में भगवान से जब सीता जी का विवाह करने गए थे तभी वो आकर्षित हो गई थी, तो वो यहाँ पर नंदों के घर में, यानी कि नंद भगवान के वो बताना रह गया, बताता हूँ आपको। तो नंद भगवान, नंद महाराज के चार भाई हैं, वो पांचवे हैं, दो भाई बड़े हैं दो भाई छोटे हैं। कागज ये सब वर्णन जो है आदि पुराण में आता है, आदि पुराण में इसका प्रमाण है कि नंद अपने सारे भाइयों के साथ नंदगांव रहा करते थे और इस गांव का नाम नंद महाराज के ऊपर नंदगांव रखा गया है। और बड़े बड़े भाई उपनंद जो थे उनको उनके पिताजी पजन्य महाराज ने नंदगांव का राज्य सौंप दिया था, लेकिन नंद महाराज के इतने दिव्य गुण थे जिससे सारे भाई प्रभावित थे। तो बड़े भाई होने पर भी, राज्य की प्राप्ति करने पर भी उपनंद महाराज ने स्वेच्छा से अपना राज्य जो है नंद महाराज को दे दिया। ऐसा कभी होता नहीं है, वो सब जगह पर खून करके, मर्डर करके, हाँ, असैसिनेशन करके, बॉम्ब ब्लास्ट करके राज्य छीन लेते हैं। कंस ने भी वही किया था, पिताजी को अरेस्ट करके मथुरा का राज्य हड़प लिया था। लेकिन वृंदावन की ब्रज की बात ही कुछ अलग है, सब उल्टा है, हम सोच नहीं सकते। पिताजी ने बड़े ढंग से, रीति रिवाज से और नियम से दिया हुआ राज्य जो है अपने छोटे भाई को दे देते हो, राजा बनाने को मजबूर कर देते, तुम राजा बनो, हम आपके प्रजा बनेंगे। तो उपनंद जो है वो बड़े भाई हैं, उससे छोटे वाले जो है अभिनंद, उनको महानंद भी कहते हैं, उसके बाद नंद महाराज है तीसरे, और दो जो है छोटे भाई हैं, एक है प्रतिनंद या सनंदन, और पांचवे है नंदन, नंदन चाचा। तो ये जो पांच भाई है ये अलग हैं, इसके अलावा नौ अलग नंद हैं और नौ अलग उपनंद हैं जो इनसे अलग हैं। तो पहले ये आपको ये जो परिवार का इन्फॉर्मेशन है वो पूरा करते हैं। उपनंद की पत्नी जो है, मैंने आपको कल कहानी बताई ना, क्या नाम है उसका, प्रभावती, गुड, सम पीपल आर रिमेम्बरिंग, मतलब कुछ लोग जग रहे हैं, इसका मुझे विश्वास है कि लंबी लंबी कथा में जगह रहना भी मुश्किल है बहुत। तो उपनंद की पत्नी जो है प्रभावती है, और उनकी दो बालक हैं ऋषभ और देवप्रस्थ, और जो प्रभावती है वो उनका ऑफिशियल नाम है, और ब्रजवासी ने रखा हुआ टोपन नाम, क्या बोलते हैं उसको, निक नेम, हाँ, वो अपना अपना नाम होता है उनका। उनका नाम था तुंगी, तुंगी का मतलब क्या है, वो बहुत लंबी थी और वो अपने पति से भी दो इंच लंबी थी, इसलिए लोकल लोग उनको तुंगी कहते थे। तो तुंगी के दो बालक हुए, ऋषभ और देवप्रस्थ, और अभिनंद यानी महानंद, इनकी पत्नी का नाम है सुषमा, लेकिन बहुत मोटी थी इसलिए उसको पीवरी कहते थे, पीवरी। और इसको दो बालक हुए, इसका नाम है विशाल और तेजस्वी, बहुत भगवान के प्रिय सखा हैं, इनकी बहुत लंबी लंबी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। और नंद महाराज का विवाह यशोदा से हुआ, यशोदा मेहरानो गांव से हैं, और यशोदा का नाम इसलिए पड़ा कि जो भी उनको देखते थे, जो भी उनको स्मरण भी करते थे, उनके जीवन में यश और कीर्ति हुआ करती थी। शी वाज सो ऑस्पिशियस, केवल उनको देखने मात्र से सब जगह पर यश फैलता था। नंद महाराज का विवाह यशोदा, यश देने वाली गोपी से किया गया, और कृष्ण बलराम उनको प्राप्त हुए। और जो छोटे भाई हैं उनके, प्रतिनंद या सनंदन, उनकी पत्नी का नाम कुबला देवी था, और कुबला देवी के द्वारा अर्जुन और अंशु ये दो पुत्र प्राप्त हुए। और लास्ट जो भाई हैं नंदन चाचा, उनकी पत्नी का नाम अतुला है, अतुला देवी, और अतुला देवी को भद्रसेन और स्तो कृष्ण ये दो को प्राप्त हुए। इस प्रकार से चार भाइयों के दो पुत्र, यानी कि आठ पुत्र जो भगवान के अष्ट सखा हैं, और आदि पुराण में उसका प्रमाण है कि ये सब लोग जैसे गोपियां वहां पर आठ घावों में विराजमान हैं, उनके माता पिता आठ घावों में बसे हुए हैं, यहाँ पर कृष्ण भगवान के स्नेह और प्रेम के और रति की वजह से ये सब लोग उनके पास ही रहा करते थे, एक ही गांव में रहते थे। जैसे राजा रानी के अष्ट सखी आए, कृष्ण के भी अष्ट सखा हैं, और इनके जो सखा हैं वो कुछ हितचिंतक सखा हैं, जो थोड़े उम्र से बड़े हैं वो हमेशा ग्वाल बाल चलाते, जो गाय चलाते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए हाथ में तलवार गदा डंडा लेके जाते हैं, और कभी कभी इतने भाव विभोर हो जाते हैं रक्षक भावना से तो तलवार निकाल के ये नंगी घूमते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, हे मंडली भद्र, अभी तक ऋषभासुर आया नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ऋषभासुर आया हुआ है तो एकदम रेडी खड़ा है वो तलवार निकाल के, अभी म्यान कर लो उसको, क्योंकि उनका भाव जो सेवा का है उसमें वो इतने रत हैं कि उनको लग रहा है कि कोई संकट आ रहा है, तो तलवार निकाल के खड़े हैं सेवा के भाव से। वही तो चिंतक गोप हैं। ये दूसरे गोप हैं उनके जो है वो सखा गोप हैं, वो उनके समवयस्क हैं सब, तो उनके साथ में वो छोटे उम्र के हैं, वो कुछ गोप जो है वो छोटे उम्र के होते हैं, तो सेकेंड रूप जो है वो छोटे उम्र का है। ये गोप जो है वो घर पे आके खड़े हो जाते हैं उनके, कैसे सुबह जब बांसुरी बजती है ना, नींद से उठते हैं भगवान, तो ये गोप आके भाग के दरवाजे पे खड़े रहते हैं और बड़ी आशा से देखते रहते हैं उनको। तो यशोदा मैं कहती है, सेवा करना चाहते हो, बोले हाँ हाँ सेवा करनी, तो आ जाओ। फिर कोई उनको पायल लगाता है, कोई स्नान के लिए शंख में पानी भर के देता है, कोई स्नान का पानी तैयार करता है, कोई कुछ करता है, कोई पीताम्बर पहनाता है, कोई बाजूबंद लगाता है, कोई कमर पट्टा लगाता है, कोई कलाई का बंद लगाता है। इस प्रकार की छोटी छोटी सेवाएं जो है भगवान की, श्रृंगार में, भोजन में, लोरी में, हाँ सब सेवा करते रहते हैं। ये उनके उम्र छोटे थे, तो जब भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किया जमुना जी के अंदर, तो भगवान जानबूझ के ये छोटे गोपों को लेकर गए थे, क्योंकि उनको उतनी अकल अब तक डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने जानबूझ के इन गोपियों को लेकर वो गाँव गए थे और सब गोपियों का वस्त्र उन्होंने चोरी कर लिया। उसके बाद जो है वो प्रिय सखाएं, ये प्रिय सखा के अंदर सुदामा जी प्रधान है। सुदामा जी जो हैं राधा रानी के बड़े भाई हैं, ये उनके लीडर हैं। और ये जो है ये भगवान के साथ में केवल इक्वल एज की लीला करते हैं, मतलब उनको डांटना फटकारना खेलना खेल में हराना और जूठन खिलाना, ये सब जो लीला है ये प्रिय सखा करते हैं। और उसके बाद में जो है वो प्रिय नर्म सखा है, उसमें ये विशाल और सुबल और तेजस्वी ये सब आते हैं उसके। ये जो विशेष गोप हैं इनका ग्वाल बालों से और गोपियों से बीच में है वो, जब कोई झगड़ा होता है गोपियों से तो कृष्ण की तरफ से ये गोप जाते हैं मनाने के लिए, और राधा रानी की तरफ से ललिता विशाखा आती है झगड़ा करने के लिए, और ये लोग सेटलमेंट कर देते हैं। हाँ, भगवान का जो है राधा रानी का रिश्ता जो है बिगड़े नहीं, इसलिए ये दे निगोशिएट विद गोपीज दे सेटल द मैटर। तो ये सुबल और जो विशाल ये जो गोप हैं इनकी गोपियाँ बहुत सराहना करती हैं, ठीक है, कितने भाग्यवान हैं ये। देखो देखो पालिका देवी ने, पालिका मंजरी ने अभी भी बीड़ा बना के दिया था, किसी को पता भी लगना रहा है कैसे वो भगवान की मुँह में कर दिया उसने, सब बालों बालों के बीच में जाकर किसी को ध्यान में नहीं आया, लेकिन पालिका देवी से बीड़ा लेकर कैसे कुशलता से उसने भगवान से मुँह में कर दिया उसको, कितने कुशल है ये। और बीड़ा मुँह में दे दिया और गले लग गए उनके, पूरे लिपट गए उनको, कितने भाग्यवान है। देखो हमको रात का इंतजार करना पड़ता है उनको गले लगाने के लिए, ये दिन दहाड़े उनको गले लगाते रहते हैं अपने आप। ये सब वर्णन जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है। रूप गोस्वामी जब सखा भाव का वर्णन करते हैं तो ये पांचों प्रकार के गोपों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से जब भी भगवान राधा रानी के विचार में व्याकुल हो जाते हैं तो ये सुबल गोप जो है उसका स्वरूप राधा रानी जैसा है, और ये सुबल गोप राधा रानी जैसा है इसका बहुत लाभ लेता है, और सखी बनकर जाकर सखियों के झुंड में घुसकर राधा रानी से मिलकर संदेश देता है और नई नई आइडिया निकालता है, और भेष बदलकर राधा रानी का भेष बदलवा कर उनका कृष्ण का मिलन कर देता है। इसलिए सुबल पर राधा रानी का बहुत प्रेम है, क्योंकि सुबल वो व्यक्ति है जो राधा रानी के हृदय को भी जानता है और कृष्ण को भी जानता है, सखा होते हुए भी सखियों के दिल की बात भी जानता है, सखा के दिल की बात भी जानता है, और उचित योग्य कार्रवाई करके इन दोनों का मिलन कर देता है। तो ये है भगवान के परिवार का परिचय। लेकिन जो मिथिलावासिनी गोपियाँ थी वो नौ नंदों के घर में उनका जन्म हुआ, और जो कौशल्या के गांव की गोपियाँ थी, कौशल देश की गोपियाँ, वो भी भगवान से मोहित हो गई थी। बहुत लोगों को नींद आ रही है तो लोग गोपियों का पुराण बंद कर देते हैं। अभी कौशलवासिनी गोपी जो थी वो नौ नंदों के घर में जन्म लिया उन्होंने, और उपनंदों के घर में जन्म लिया कुशलवासिनियों ने, और मिथिलावासिनी ने नौ नंदों के घर में जन्म लिया। और ये जब दही बेचती थी तो दही लो के बदले में कृष्ण लो कहते थे। इतना उनके मन में कृष्ण जो है बस गए थे कि उनके जुबान से दही लो दूध लो मक्खन लो के बदले में कृष्ण लो ऐसे कहते। हमारे मराठी हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो मराठी में बहुत गीत हुआ करते थे कि गोपियाँ जो है वो कृष्ण को मतलब जा रही दही बेचने के लिए, लेकिन कृष्ण को बेचने ऐसे बोल रहे हैं कृष्ण को लो कृष्ण को ही मानो बेच रही है वो, ऐसा बहुत गीत गाया करते थे हम लोग बचपन में। तो नौ उपनंद जो है उनका नाम है वीति होत्र अग्निभुक सांबू श्रीकर गोपति श्रुत ब्रजेश पावन और शांत, ऐसे नौ उपनंद हैं। इनके घरों में कौशलवासिनी गोपियाँ इन्होंने जन्म लिया। और मिथिलावासिनी गोपियों का एक विशेष महात्म्य ऐसा है कि मिथिला की गोपियाँ जब आई यहाँ पर, तो जब भी मैंने कल आपको कथा बताई थी ना कि जब राधा रानी का और कृष्ण का जो विवाह का प्रस्ताव रखा गया था पूर्णमासी को तो उसने वो कैंसिल कर दिया, तो विशेष करके ये गोपियाँ बहुत उदास हो गई थी। तो ये गोपियाँ जमुना जी के पास गई हैं, उन्होंने एक महीने का कात्यायनी व्रत किया है, और इस कात्यायनी व्रत के फल के रूप में जमुना जी के आशीर्वाद से भगवान ने उनका चिरहरण किया है, सब गोपियों का चिरहरण नहीं किया है, केवल जो मिथिलावासिनी गोपियाँ हैं। चिरहरण व्रत करने का मतलब क्या है, मुझसे क्या भगवान है, हमारे कपड़े वपड़े चोरी करते हैं कैसे भगवान है, इट्स वेरी इमोरल एक्टिविटी। हाँ, लेकिन चिरहरण जो है कोई व्यक्ति उसी का करता है जो उनकी पत्नी होती है। तो भगवान ने ये सब गोपियां कात्यायनी व्रत करती है उनकी पत्नी बनने के लिए। तो भगवान ने फिर उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया उनका चित्र हरण करके, और उसके बाद में उनसे रासलीला में प्रवेश दिया उनको। तो इस प्रकार से ये सब वर्णन यहाँ समाप्त होता है। नंदगांव का आनंद जो है अनंत है, यहाँ पर अनंत प्रकार की लीलाएँ होती रहती हैं। और यशोदा मैया के पास जितनी गाय हैं उसमें से 100 गायों को वो अलग रखती है, उनको कमल की खुशबू वाली घासों को खिलाती है, उसकी वजह से उनके दूध को भी कमल की खुशबू आती है, उसकी वजह से उनके दही को भी कमल की खुशबू आती है, उसकी वजह से मंथन करने के बाद जो मक्खन निकलता है और गाढ़ा कमल की खुशबू आती है उससे, और वो मक्खन बड़े प्रेम से वो भगवान को खिलाती है। इसलिए जब ही भगवान ने गिरिराज को उठाया तो यशोदा मैया बोल रही है अपने सखियों से, देखा मैंने इतना मेहनत किया मक्खन का, इसलिए वो उठा पा रहा है। बेचारा मतलब इतना सरल भाव है हृदय, कोई कपट नहीं उसके मन में, एकदम निरागस भाव है, निष्पाप भाव है। तो बाल बाल क्या बोल रहे हैं, अरे हमने उसको रोज ट्रेनिंग दिया था कुश्ती का, मैंने कई बार हराया उसको, लेकिन जो ट्रेनिंग मैंने दिया उसकी वजह से वो आज देखो उठा रहा है। बड़े गाल बाल जो है वो बड़े उम्र वाले सोच रहे हैं कि अरे बेचारा बालक है, वो उसका हाथ दुखता होगा इसलिए वो सब डंडी लगा के खड़े हैं। हाँ, कोई आके हाथ के नीचे भी डंडी लगाया, क्योंकि एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं एक हाथ से फुकते, इसके आगे एक सपोर्ट दिया उन्होंने, तो भगवान ने उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया। सब जब हिला तो बोले हाँ नहीं 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 वही उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे। लेकिन जो गोपियाँ हैं वो कुछ अलग ही सोच रही हैं, वो सुन रही हैं सब लोगों को बात करते हुए, यशोदा को भी सुन रही है, ग्वाल बालों को भी सुन रही है, बड़े गोपों का भी डिस्कशन सुन रही है, लेकिन वो समझते हैं किसी को पता नहीं सत्य क्या है। सत्य तो ये भी नहीं है कि माखन खाने की वजह से शक्ति आ गई है, शक्ति आ गई होगी लेकिन इतनी नहीं जितना गिरिराज को उठाने में योगी जरूरी है। और ग्वाल बाल सपोर्ट दे रहे हैं उनको पता नहीं है कौन उठा रहा है, और ये तो गंवार ग्वाल बाल छोटे से हैं वो सोच रहे हैं कि हमने उनको कुश्ती सिखाया था, उनको पता नहीं रहस्य की बात क्या है। रहस्य की बात तो ये है कि राधा रानी उनको तिरछी नजरों से देख रही है, उससे उनको बल प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो अभी तक उसको उठाए रखे हैं गिरिराज को। तो ग्वाल बाल में उनके बहस होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी देख रहे हैं राधा रानी को, उतने में बलराम जी उनको देखते हैं। तो कृष्ण भगवान को देख रहे हैं कि वो राधा रानी की ओर देख रहे हैं, तो बड़े भाई देख रहे हैं ये उनको समझ में आता है, तुरंत नजर झुका देते हैं आदर की वजह से। इसलिए हमारे जो श्रीनाथ जी है ना, गोपालनाथ जी, गोपाल जी मंदिर में उनकी नज़र झुकी हुई है सम्मान से अपने बड़े भाई के साथ में, वो ऐसा प्रणय का दर्शन नहीं कराते। तो फिर गिरिराज लीला समाप्त हो गई, गिरिराज भगवान ने नीचे रखा, इंद्र ने वर्षा रुका दी, सब लोग गिरिराज के बाहर आ गए, भगवान ने रज नीचे रख दिया उसको, और फिर सखियों के साथ सखाओं की मुलाकात हुई। तो सखा बोले आप लोग बड़े ताने मारे थे ना वहाँ पर, बड़े बड़े टिमके बजा रहे थे ना कि नजरों से उठाया था, अभी उठा के दिखाओ राधा रानी को लेके आओ, और आप कह रहे थे कि उनकी नजरों से उन्होंने गिरिराज को उठा के रखा था, तो उठा के दिखाओ। तो राधा रानी वहां पर आती है और अपनी नजरों से गिरिराज को ऊपर उठाती है आकाश में, सबके आंखों के सामने गिरिराज आकाश में जाते हैं, राधा रानी जब तक देख रही है तब तक वो आकाश में, जब नजर को झुकाती है तो गिरिराज जी अपने स्थान पर आ जाते हैं। राधा रानी की जय हो। राधा रानी महाप्रतापी हैं, हाँ कृष्ण को तो उनको वहां जाकर मारना पड़ा, लेकिन राधा रानी के भय से कंस यहाँ आ ही नहीं पाया बाद में। हाँ, राधा रानी ने उसको कन्या बना दिया जब आया था, कंसनी को भी बना दिया था उसको, और साप भी मतलब डरा दिया था उसको, दोबारा आओगे तो परमानेंट स्त्री बन जाओगे। तो राधा रानी इतनी महाप्रतापी है कि उसके भय की वजह से कंस कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया, इसलिए उसने और षड्यंत्र रचा, कभी कृष्ण को ही वहां बुलाते हम जाने के बदले में, उसको यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बरसाना नंदगांव जाऊवट ये जो अंतरंग लीला स्थान है, तो ये सब यहाँ की चटपटी लीला है। नंदगांव जो है यहाँ जैसा आनंद कहीं नहीं है, सभी ग्वाल बाल सभी नंद बाबा और गोप जो है कृष्ण भगवान का सानिध्य का आनंद लेते हैं, यहाँ पर अनंत लीला करते हैं सभी जीवों के लिए जो कल्याणकारी है, इसके बारे में बोलना इसके बारे में सुनना ये सब हमारे आत्मा के लिए कल्याणकारी है। जय जय श्री राधे श्याम नंदगांव धाम की। लेकिन जिस जगह बैठे उसका तो कथा बताया नहीं, फिर कैसे होगा। अभी आप लोग एक मिनट खड़े हो जाओ, दो मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ।